इसलिए वे उसमें आराम से रह रहे। परंतु समुद्र के जल से और किसी का भी संतर्पण नहीं हो सकता। समुद्र स्वयं भी यह चाहता है कि मेरा भी संतर्पण हो। ऐसी स्थिति में समुद्र सूर्य से कहता है कि अरे सूर्य, तू मुझे सोख, और मुझे सोख करके बादल को मेरा रस प्रदान कर, और वह बादल जिस समय बरसेगा उस समय मुझे भी मीठा पानी मुझे भी मिले। और वो जो पानी है मीठा पानी, समुद्र में पानी हमारी दृष्टि में खारा है, परंतु तो हमको प्राप्त करने के लिए वो पानी मीठा होगा कब, जब बादल के द्वारा बरसेगा। अतः जो राग लोभी जन है उनको भी भक्त रस का दान करने के लिए श्री महाप्रभु अवतरित हुए। संसार के अन्य जितने भी जीव थे उनकी जिह्वा कहीं दुष्ट हो रही थी सांसारिक विषय वासनाओं के कारण। जैसे चंद्रक रोग का की निवृत्ति के लिए मिठाई खिला करके ही चंद्रक रोग की निवृत्ति होती है, और जो जो रोग दूर होता है त्यों त्यों मिश्री में स्वाद आने लगता है, ऐसे ही श्री महाप्रभु जहां श्री राय रामानंद के पास में पहुंचते हैं, अपनी कृपा का ही संचार करते हैं श्री राय रामानंद में, और राय रामानंद के सामने स्वयं आप श्रोता बनकर के विराजमान हो जाते हैं। राय रामानंद को कहना पड़ता है मोर मुखे वक्ता तुम ही हो श्रोता, महाराज मैं तो केवल मुख हूं वक्ता आप। तो समुद्र जैसे अपने खारे पानी को दूसरों के लिए दुर्लभ, दूसरों के लिए अस्वाद्य जो जल है उस जल को सुस्वाद बनाने के लिए जैसे वह बादल को रस प्रदान करता है, वह सूर्य के द्वारा अपने जल का शोषण करवा करके बादल को प्रदान करता है और बादल के माध्यम से सबको प्रदान करता है, ऐसे ही स्वयं श्री महाप्रभु भी अपनी कृपा रूपी सूर्य के द्वारा अपने हृदय के उस प्रेम रस का पहले श्री राय रामानंद में स्थापन करते हैं, और राय रामानंद से वर्षा जब होती है तो समुद्र में भी तो वर्षा होती है, उसका भी आस्वादन भी स्वयं देते हैं, और उसी के माध्यम से आपने जो फिर स्वयं कृपा की, उस कृपा के माध्यम से श्री रूप गोस्वामी के ऊपर अपूर्व कृपा का संचार करके जगत को भी उस रस का लोभ बनाया। मुझे पता नहीं समय की क्या सीमा है, बस समाप्त करो तो मुझे पता नहीं। तो श्री महाप्रभु ने जैसे खारा पानी बादल के माध्यम से मीठा होकर के सबको सुलभ हो जाता है, सबको सुस्वाद बन जाता है, इसी प्रकार श्री महाप्रभु तो अपने रस में स्वयं डूबे हुए, निजानंद में स्वयं डूबे हुए हैं, परंतु वे स्वयं श्री राय रामानंद अपने परकर के साथ में श्री स्वरूप दामोदर के साथ में वार्तालाप करते हुए उस रस का स्वयं आस्वादन लेते हैं, और श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से उस रस को जगत के सामने भी प्रकट करवाते हैं। बादल के माध्यम से ही वह समुद्र का खारा जल सुस्वादु होकर के सबको सुलभ होता है। आता है श्रीमद् भागवतस्य तत्व ममलम को वेत्त रूपम बिना, श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी बार निरूपण कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के उस तत्व को श्री रूप गोस्वामी के बिना कौन जान सकता था, कौन जान सकता था। श्री रूप गोस्वामी के चरणों का आश्रय लोभ को उत्पन्न करने वाला महाप्रभु स्वयं रसलोभ, महाप्रभु का परकर वो रसलोभी, और महाप्रभु के परकर का आस्वादन आश्रय जो ग्रहण करेगा वो भी लोभी बन जाएगा। ये तो लोभियों की बरात है, यहां पर लोभियों की भीड़ है। गौड़ीय उपासना पद्धति लोभजन्य उपासना पद्धति है, लोभियों की भीड़ है, और यहां पर श्री गौर परकर को ग्रहण करके जो भी विराजमान होगा वो सब क्रीड़ी हो जाएंगे, सब लोभी हो जाएंगे, सब महा महा कृष्णु होकर के ही वे विराजमान होंगे, और वे सब उस रस का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान। श्री रूप गोस्वामी उसी लोभ को कृपा करके प्रकट करते हैं अपने काव्य के द्वारा। जब रूप गोस्वामी के काव्य को सुना जाता है कौन के हृदय में लोभ नहीं होता है, अब वो उसकी परीक्षा करने वाले भी कौन, रूप गोस्वामी का वाइवा उसे हो रही है, वाइवा हो रहा है। श्री जगन्नाथपुरी में रूप गोस्वामी विराजमान है परीक्षक वो परीक्षार्थी बनकर के, श्रीमद् महाप्रभु स्वयं निर्णायक बनकर के बैठे हैं, एक और स्वरूप दामोदर विराजमान है, एक और श्री राय रामानंद विराजमान है। महाप्रभु कह रहे हैं अच्छा तुमने नाटक लिखे हैं, बोलो नांदी बोलो। अच्छा नांदी के बाद में प्रस्तावना कैसे की उसको बोलो। फिर बीज का नाटक में बीज होता है, बीज बिंदु पता का प्रक्रिय फल, ये जो नाटक की पांच जो दशाएं हैं उन कार्यावस्था जो है उन कार्यावस्थाओं का हमारे सामने वर्णन करो। आरंभ प्रयत्न प्राप्ति आशा फलाप्ति फलागम, ये जो है ये पांच जो नाटक की जो अवस्थाएं हैं उनका वर्णन करो। पूछ रहे हैं बोले ठीक है बीज का बपत कैसे हुआ, कहां से शुरू किया। बोले श्याम चंद्र के वेणुनाथ श्रवण करके दूर आत्य संगत श्रुत में थे। बोले अच्छा फिर विरह की दशा कैसे हुई, अब यहां पूरा इंटरव्यू हो रहा है। रूप गोस्वामी जी विराजमान है और श्री महाप्रभु एकांत में बैठे हुए हैं और यहां पर एग्जामिनर कौन है, परीक्षक कौन है, वो श्री स्वरूप दामोदर श्री राय रमन। और इनके बीच में श्री रूप गोस्वामी जिस समय अपने काव्य का वर्णन करते हैं सब अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं और कह रहे हैं आहा रूप का कवित्व अमृत की धारा, ऐसा अमृत में कवित्व और कहां मिलेगा, कहां मिलेगा। जिस कवित्व का दर्शन करके लोभ उत्पन्न होता है, महा श्री कृष्ण स्वयं रसलोभी हुए महाप्रभु हुए, महाप्रभु स्वयं रसलोभी हुए श्री राय रामानंद के पास में आकर के उस तत्व का विवेचन कर रहे हैं, अपने अंतरंग पार्षद के साथ में बैठ करके तत्व का विवेचन कर रहे हैं। उनका परकर रसलोभी हुआ श्री महाप्रभु के पास में आकर के शरणागत हो रहा है, रस की शिक्षा प्राप्त कर रहा है, रूप शिक्षा सनातन शिक्षा आदि प्राप्त कर रहा है, वो स्वयं रसकों के बीच में जाकर के अपनी परीक्षा दे रहा है। और जब रसिक जग कह रहे हैं कि आहा ये काव्य इससे बढ़कर के कोई काव्य हो नहीं सकता है, तब उस रस का परवेषण किया जा रहा है, तब उस रस को प्रकाशित किया जा रहा है। इसके पहले उसका प्रकाशन नहीं हुआ, उसके पहले छपा करके रखा गया। और जब रस उत्पन्न हुआ तब व्यक्ति भूल गए कि हमको भजन करना है संसार सिंधु को तरने के लिए, बंदा कहीं दूर दूर तक नहीं। यह गौरी जो उपासना पद्धति है ये संसार सिंधु को तरने के लिए ये उपासना पद्धति अपने मूल लक्ष्य में नहीं है। ये बड़ी पकड़ की महत्वपूर्ण बात है कि गौरी जो उपासना पद्धति श्री रूपानुगा जो उपासना पद्धति है वह रूपानुगा उपासना पद्धति संसार सिंधु मत दुष्कर मुक्तिर्षो नान्य प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण मंत्रेण, उनकी लीला कथा का निषेवण जो किया जा रहा है वो संसार सिंधु को तरने के लिए नहीं है। संसार का भय हमारे ऊपर समाया हुआ है, इसलिए भय में आकर के संसार सिंधु को हम पार करें, इसलिए ये गौड़ी उपासना पद्धति श्री रूप गोस्वामी के द्वारा प्रकट की गई उपासना पद्धति ये नहीं है। नाना विधो विविध दुख दवाग्नि तस्य, जो संसार दुख दवाग्नि में चल रहे हैं उनके लिए ये मार्ग बताया गया, उससे बात नहीं है। जहां पर अमृत का सिंचन होगा वहां पर दुख तो अपने आप बुझ जाएंगे, उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं किया करना पड़ेगा, परंतु तो वहां मोक्ष फल नहीं है, मोक्ष फल भय भी नहीं, दुख की निवृत्ति श्री रूप की उपासना का मोक्ष फल नहीं है। दुख की निवृत्ति तो अपने आप होगी, जब सुख मिलेगा जहां सूर्य होगा वहां पर अंधकार रहेगा ही नहीं, जहां सुख है वहां पर दुख तो रहेगा ही नहीं, वहां पर जो दुख होगा वो कुछ भिन्न प्रकार का दुख होगा और वो दुख है उत्कंठा रूपी दुख, ऐसा नहीं है दुख निवृत्त हो जाए। श्री जीव गोस्वामी पाद इस बात को प्रतिपादन करते हैं कि जहां जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती जहां स्वकीय परकिया का विवेचन कर रहे हैं, उस श्री जीव गोस्वामी जी ने जहां लिखा के स्वेच्छा लिखितम किंचित परिच्छया, जहां पर ये वर्णन कर रहे हैं वहां पर ये प्रतिपादन कर ये कहीं संकेत दिया कि ये जो मिलन है इस मिलन के भीतर एक अपूर्वता विराजमान है और वो अपूर्वता विराजमान है कि यहां पर मिलन के साथ साथ उत्कंठा का दुख भी विराजमान है। इसी बात को महाभाव की जहां व्याख्या की गई, महाभाव की जहां परिभाषा दी गई अनुराग स्वसंबित दशम, इस श्लोक की इस कारिका की टीका में भी श्री जी गोस्वामी ये प्रकट करते हैं कि दुख और सुख एक काल में युगपत प्राप्त होते हैं महाभाव। जैसे क्षुधा और भोज्य ये दोनों एक काल में प्राप्त हो तब वे सुखकर होते हैं, इनमें से एक भी वस्तु हट जाए तो सुख की प्राप्ति नहीं होती। भोजन सामने हो और भूख ना हो, तो बिना भूख के यदि भोजन करना पड़े तो वह दुख देने वाला हो जाएगा, दुखकर हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। कोई कहे नहीं खाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती खिलाए तो पचेगा नहीं, शरीर स्वीकार नहीं करेगा, उल्टी हो जाएगी। तो भूख होना आवश्यक है, और भूख हो और भोज्य न हो तो उस स्थिति में भूख जो है वो भी दुखकर हो जाएगी। दोनों वस्तुएं एक साथ होती हैं तब सुख की प्राप्ति होती है। क्षुधा और भोज्य ये दोनों एक काल में होना चाहिए, और श्री कृष्ण प्रेम की ये एक विशेषता है, लोभजन्य कृष्ण प्रेम की एक विशेषता है कि इसमें सदा सदा भूख बनी रहती है, सदा सदा भोज्य जो सामग्री है उसकी नूतनता की प्राप्ति भी होती रहती है। प्रपद्यमान से यथास्त्र तस्यो तुष्टि पुष्टि क्षुधपायो न घासम, जब सामान्य भक्ति में ही ये भाव विराजमान तो फिर प्रेम लक्षण भक्ति और श्री प्रिया जी की जो मादनाक्ष भक्ति है उसका तो कहना ही क्या। तो जो मादनाक्ष महाभाव दशा की जो स्थिति है, जो महाभाव दशा की स्थिति है, उस महाभाव दशा की एक विशेषता है कि उसमें श्री कृष्ण मिलन की उत्कंठा, कृष्ण मिलन का उत्कंठा का लोभ, लोभजन्य उत्कंठा, और श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वाद, ये दोनों वस्तुएं एक काल में बना रहता है, इसलिए कभी भी तृप्ति नहीं। एक और उत्कंठा है और दूसरी ओर कृष्ण के माधुर्य का अपूर्व आस्वाद है। तो ये जो कूढ़ तत्व है, इन कूढ़ तत्व को प्रकट कर सकने की सामर्थ्य यदि कहीं रही तो वो श्री रूप को समझ में रही। अतः रूपांग का जो उपासना है, उस रूपांग का उपासना की एक बहुत महत्वपूर्ण यह आधार भूमि है कि यहां पर यमधर्म राज के भय के कारण भजन नहीं किया जा रहा है कि न भजंती अवजानंती स्थानाधिष्ठा पतंत्य अधः। एकादश स्कंध में कहा गया, चमस योगेश्वर श्री निमि महाराज से कह रहे हैं कि जो भजन नहीं करता है वह अपमान ही करता है, भजन न करना ही अपमान है। न भजंती अवजानंती, भजन न करना अपने आप में ही एक अपमान है। हम जिसके शेष हैं उस शेष की आराधना न करें, हम जिसके शक्ति हैं, शक्ति की वृत्ति हैं, शक्ति की वृत्ति होकर के उस वस्तु की यदि हम आराधना न करें तो हम अपने आप ही अपराधी हैं। इसलिए श्री कृष्ण का हमने तो कोई अपराध किया नहीं, हम तो विषयों का सेवन करें, हम अपराधी थोड़ी होंगे। यदि कोई ये विचार करे तो वो अपराधी ही है। भजन न करना अपने आप में अपराध है। तू जिसका अंश है उसकी सेवा नहीं करे, तू जिसका अंश है उसका सेवन, उसका भजन न करे, भज सेवायाम धातु है, उसका भजन न करे तो अपने आप ही अपराध है। अतः भगवत भजन से किसी को भी मुक्ति नहीं। न भजंती अवजानंती स्थानाधिष्ठा पतंत्य अधः, न भजन न करना यही उस अपने आश्रय तत्व का अपमान करना है, और वहां पर स्थान से भ्रष्ट होने की संभावना पूरी पूरी बनी रहती है। अतः यमधर्मराज अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि जुह्वान भक्त भगवत गुण नामधेयम चेतश्च न स्मरति यत् तच्चरणारविन्दम् और कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तान आनेत्व असतो कृत विष्णुकृत्यान्। अकृत विष्णुकृत्यान्, जिन्होंने विष्णुकृत्य नहीं किया है उनको मेरे पास में पकड़ करके ले आओ। जुह्वान भक्ति, कृष्ण का अपमान करना यही यमधर्मराज के नरक को पहुंचाने वाला नहीं है, कृष्ण नाम न लेना यह भी यमधर्मराज के नरक को पहुंचाने वाला है। यमधर्मराज के स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि जिह्वान भक्ति, जिसकी जीव कृष्ण नाम नहीं लेती है जिसका सिर कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता है उनको पकड़ लाओ मेरे पास, उनको दंड दिया जाएगा। यम का हमको दंड मिलेगा, इसलिए भाई के कारण प्रीति कर रहे हैं, भाई के कारण प्रीति करनी चाहिए। ये भी रूप गोस्वामी का बताया हुआ मार्ग नहीं है, भाई की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। रूप के मार्ग को अपनाया जाएगा, भाई की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। ऐसे ही रूप के मार्ग का आश्रय ग्रहण किया जाएगा, संसार सिंधु अपने आप तर जाएगा। परंतु यदि रूप के मार्ग को अपनाना है तो रूप के मार्ग को अपनाने के लिए श्री राधा और राधिका परिकर के आश्रय को ग्रहण करना पड़ेगा, श्री गौर आश्रय को ग्रहण करना पड़ेगा। बिना गौर आश्रय के उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। स्वयं श्री श्याम सुंदर को भी जब तक आप श्री प्रिया जी के चरणों में गिर करके प्रार्थना नहीं करते हैं कि नपहारे हम निर्वृत्त संयोजन, तब तक वह रस की प्राप्ति श्री श्याम सुंदर को भी प्राप्त नहीं हुई। बस आदेश हो गया, इसलिए अपनी बात को समापन कर रहा हूं। एक रसकों के मुख से कभी एक प्रसंग सुना था, बस उस प्रसंग के साथ शायद प्री लगेगा, अपराध तो होगा समय का अतिक्रम करने पर, परंतु नहीं, बहुत जल्दी उसको समाप्त करके बात को यहीं विश्राम प्रदान करूंगा। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में श्री कृष्ण पहुंचे, ब्रह्मा जी की सभा में। अब रसकों के मुख से सुना है, कहां कोई किसी प्रमाण में है, कहां नहीं है, वो नहीं हो, परंतु रसकों की वाणी अपने आप में प्रमाण है। ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे, वहां पर मूर्तिमान वेद विराजमान है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारे उपनिषद विराजमान है, सारे पुराण विराजमान है, मूर्तिमान ब्रह्मा जी की सभा में, जैसे गोप कुमार की सभा में श्री भागवत अमृत वर्णन कर रहे हैं विराजमान। श्री कृष्ण जो प्रकट हुए, ब्रह्मा जी उठ करके खड़े हो गए, महाराज आप कैसे प्रकट हुए? बोले एक समस्या आ गई थी और शास्त्र के द्वारा उसका समाधान हो सकता है, आपके यहाँ पर सारे शास्त्र विराजमान हैं, ये मुझे पता लगा इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। बोले बताइए। बोले मैं ये पूछना चाहता हूं कि कृष्ण चरणारविंद में लोभमय प्रीति कैसे उत्पन्न हो? सारे शास्त्र आपस में एक दूसरे को दें, तुम बोलो। बोले मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो। बोले नहीं, अब मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो। सारे शास्त्र एक दूसरे से कह रहे हैं। उस समय सब शास्त्रों ने भार सौंपा श्रीमद भागवती संहिता को, और श्रीमद भागवती संहिता जब सब शास्त्रों की ओर से निष्कर्ष प्रतिपादन करने के लिए बैठी, विराजमान हुई, तो बोली महाराज बात यह है कि ये विधान तो शास्त्रों में पहले ही स्थापित कर दिया गया, मैं शास्त्रों का सार हूं, इसलिए सारम सारम समुद्रतम, इसलिए मुझे सर्व वेदांत सारम कहने के कारण मुझे यहां पर बोलना पड़ रहा है, परंतु ये तो शास्त्रों में पहले से प्रतिपादित है। बोले क्या प्रतिपादित है? बोले महाराज विधान एक होता है, विधान बार बार नहीं बदला जाता, विधान तो एक बार बन गया तो बन गया, उसको बार बार कोई परिवर्तन थोड़ी किया जाता है। और विधान ये है कि नैषा मति तावदुर्क्रमाङ्गि स्पर्शत्यनर्थापगमो यदर्थ मही असाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। बोले महाराज जब तक निष्किंचन किसी वैष्णव की, किसी परम भक्त की रज का माथे के ऊपर उस रज को धारण नहीं किया जाएगा, तब तक आप जिस लोभ की बात कर रहे हैं कि कृष्ण भाव रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, कहां से खरीदूं, वो मति कैसे प्राप्त होगी? वो मति आपको तब तक प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक कि मही असाम पाद रजोभिषेकम, संतों की चरण रज को ग्रहण नहीं किया जाए। बोले अच्छा संत कौन है? मैं इस बात का भी विवेचन करना पड़ेगा। ये बात तो पहले ही सिद्ध है, सुसिद्ध है कि भक्त का जहां प्रतिपादन करने का प्रसंग आया, जिनमें निष्किंचनानं कुछ भी न चाहे ऐसी शुद्ध प्रीति जिनमें विराजमान है, उन भक्तों में, ऐसे प्रेमी जनों में, ऐसे भजन करने वालों में, ऐसी सेवा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है तो वृषभानंदिनी श्री राधा रानी ही है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। किशोरी जी के चरणारविंद में गिरो, किशोरी जी के परिकर का अनुगत्य ग्रहण करो, उनके परिकर के अनुगत्य के द्वारा श्री विशाखा जी का आश्रय ग्रहण करो, वे आपको रस का संचार करेंगे, खाना संपूर्ण मीठे जल का आस्वादन करके विराजमान होगा, उनकी कृपा से प्राप्त होने पर श्री रूप मंजरी रत मंजरी आनंद मंजरी अनेक जो पूरा का पूरा हम कलियुग के जीव को परम परम भाग्यशाली हमारे बराबर तो कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता, जहां पर पूरा का पूरा निकुंज उतर करके चला है हमारे बराबर कौन भाग्यशाली हो, तो जहां पूरा निकुंज विराजमान है उनके चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करो तो सही, बस इसी लोभ में आज श्री रूप गोस्वामी के चरण आश्रय को ग्रहण करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनकी चरण रज को मस्तक के ऊपर धारण करके श्री कृष्ण हृदय रज को जहाँ पर बंदे नंद विजय श्री राम पाद रेणु इस पाद रज को अपने मस्तक के ऊपर धारण करके हम कृतज्ञ हो जाए उनके श्री चरणारविंद के लिए ही प्रार्थना। इन्हीं वचनों के साथ भगवान से अभी देखा गया ये गायों या धूल खूब क्रोध के आ रही थी और जहां पर यमुना और जहां यमुना जी का इन्होंने स्मरण किया और जहां यमुना जी का स्मरण करके इन्होंने जो उनकी वंदना की थी उसका मंगलाचरण करके 10 मिनट का विवाद शुरू कर दिया। इन्होंने यमुना जी का स्मरण किया और साथ में जैसे महाराज के साथ में ये रहते ना हमारे गंगा प्रसाद जी पंडा जी ऐसे वहां भी हम जैसे ही पंडा को मिले और वो जब गए तो उन्होंने कहा ये क्या है अपराधीनंद सर्वसर्गस्यात्राभवत्खण्डनम् जयकर महाप्रभु जी यहाँ नंद बाबा का भवन था पानी हो गए मिट्टी उठा उठा के माथे पर रख लीजिए माधव ब्राह्मण के मुख से निकली हुई अमृत धारा को श्रवण करता हुआ मधुपुरी मध्य मैं कब विचरण करूंगा उनका भी स्मरण करता हुआ और रूप गोस्वामी जी का एक श्लोक केवल बोलना चाहता हूं कितना भाव है बढ़ा तुरंत कस्य पत्तमे विपत्तहारिणी प्रेक्षया न पाप दो विपाप संदर धारिणी नीर माधुरी प्रप्य शेष चक्र चंदनी इनके इस अष्टक में वो पंक्ति को स्मरण दिलाना चाहता हूं जैसे शंकराचार्य जी ने कहा आपको आश्चर्य हो शंकराचार्य जी ने जब शक्ति का स्मरण किया और उन्होंने गाया तो राधा रानी सामने थी उनकी तपन कन्या मुरारी तेज भव भय दवाम भक्त वरदान विपच्यालो स्मरण किया वो तो किया तो बहुत अच्छा किया और अंत क्या राधा रानी शंकराचार्य जी को याद आ गई बोले मुझे भी अच्छा लगता है इसमें उन्होंने जय रमन ले जाए धन्यवाद संकट नाम शरण पावे नाम इसमें शंकराचार्य जी ने जो स्मरण किया वो राधा रानी की याद दिलाता है आप उसको ध्यान से सुने करणम मुमुर हेम मया चल पाद करो रोधारण के करणम मुमुर करणम मुमुर हेम हेमम
मैंने सोचा ठाकुर जी के भी सोलह कला है, तो श्लोकों में रूप गोस्वामी जी को भी सोलह बार याद करूं, तीन श्लोक ज्यादा नहीं। और आपको सुनाता हूं ये गोकुल की बात ठाकुर धाम सूत्र के अंत में लिखाई है, और उन्होंने रामानु शक्र गढ़ देश आपके गोकुल मद पृष्ठ नायक ठाकुर धाम सिंधु गठन कथा क्षुद्र रूप गोस्वामी आपने अपने को क्षुद्र लिखा है। मजा आ गया, क्यों कि मजा इसलिए आया कि जब इन्होंने भक्त सामर सिंधु की रचना की तो कालिदास से प्रभावित थे, कालिदास से प्रभावित। क्यों? ये कालिदास ने इतने लिखा है कि वयोनिधि चार, वयोनिधि चार और भक्त सामृत में प्रकरण चार, भीतर सिंधु अगर ये है अमृत सिंधु तो पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण इसी जो मतलब चार भाग कर दिए, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। अरे सिंधु वहां होता है या लहर होती है? इस किताब में लहर कहां है? रूप गोस्वामी बोले मैं लहर ही देता हूं, मैं इसके भीतर लहरी रखूंगा। इसलिए बड़ा विचार करके वयोधरी भूत चतस्तमुद्रा कालिदास चार समुद्र, ऐसे ही हमारे भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार समुद्रों का सार और लहरियों के साथ में लिया। वो तो मैं बहुत अच्छी बात की, एक बात कहना चाहता था, जब इन्होंने रसों के विवेचन की बात की तो मन में आया क्या विभत्स रस भी इनको करना पड़ा होगा, जब श्रृंगार रस और हास्य रस, हास्य के बड़े भेद और अमुक अमुक उनमें से विभत्स में इनको क्या मिला होगा। बोले विभत्स में समझाया वो गोस्वामी जी ने तो बड़ी जल्दी याद आ गई, कौड़ी का मल ललच रहा था और ठाकुर जी से कह रही थी कि आप मुझे अंगीकार कर लो, यही विभत्स रस बहुत बढ़िया जवाब। वाह नहीं नहीं, रूप गोस्वामी जी ये कहते थे जिस प्रेम से प्रेम का पूजे आए पति, और जब भगवतोन्मुख हो जाए यानी वहां की कामना को ठाकुर जी में जब लगा दिया जाए और जब पत्नी का मुख देखते हुए भी विरक्ति आ जाए, उसमें विरक्ति आ जाए, उसमें दुख लगने लगे बहु का मुंह देख करके, तो समझ लो ये विवाह से उनका हंडी। मैंने वाह गोस्वामी जी, मैं तो ढूंढ रहा था दीदी वसरस में आप क्या कहेंगे। बोले यही कहूंगा प्यार करने वाली पत्नी को भी देख करके और अपना जगह ना ऐसी वृत्ति की बात कहने वाला संसार में अगर भक्त रस में सब रसों का समावेश करने वाला कोई हुआ तो इस साहित्य की भूमिका को लेकर चलने वाले प्राचीन भारत के समय के व्यवहार भाव व्यवचारिक संयोग रस निष्पत्ति को लेकर अपना ये प्रबल भक्त रस प्रकट करने वाले कोई हुए वे रूप गोस्वामी हुए। और इसी कारण हमने सोलह बार रूप लिया है, रूप श्री राग का सत्त रूप शास्त्र के रूप अध्यक्ष रूप और दूसरी तरह की समय मिलेगा तो दो बार तो सोलह खराब हो जाएगी और हमारा वचन पूरा हो जाएगा। घबराना नहीं, बहुत अच्छा करूंगा। रूपो लौकिका पूरा रूप तुम्हारा नाम रूप है, तुम लिखते हो क्षुद्र रूपा का, बोले यहाँ इसलिए लिखता हूँ मुझे अपना भी रूप और अच्छा नहीं लगता, क्षुद्र रूप लिखते तो मालूम पड़ा है अपना भी रूप ठाकुर जी का रूप है तो मेरा खाए का रूप। अरे जहाँ जमीर था हुसैन शाह की पास में वहां की बात छोड़ो, उस समय तो बड़े तुम्हें न था परंतु अब तो मैं उस आकाश मेरे से ज्यादा रही थोड़ी ज्यादा संकट भावनी थी इनका दूरी पर तो ऐसे रूप रूप लौकिक रूप काव्य विशारद अगर काव्यों में देखो तो काव्य विशारद और रूप भक्त रसे मगन रूप लीला रसावृत रूप लीला रसावृत रूप चैतन्य पादाब्ज भास्करस्य च रूप दृढ़ हरे विष्णु के चरण में दूर हुआ है और वहां इनकी जो भेंट हुई आप लोगों को एक बात यहाँ दो मिनट में बता देता हूं वल्लभ गुरु संप्रदाय यशोदोक संग्राम संप्रदाय बालक कृष्ण की सेवा का विधान करता है ये इन्हीं महात्माओं का कारण है जो इन्होंने माधुर्य रस में प्रवेश करके भजन न हो कारण कि इनको पता ही नहीं था माधुर्य में मजा क्या है जगन्नाथ ने देखा स्वामी जी कहां से आ रही हो बोले मैं गोवर्धन के नीचे से आ रही हूं तो अकेले में देख करके और नाला खोलने लगे भगवान और वल्लभाचार्य जी कह रहे वो कह रहे वल्लभाचार्य जी कलिंद उद्भूता और वहां पर अनुचरण की चल रही थी इसी स्वामी क्रिया एकांत में देखा अरे तुम कृष्ण को संग ला रहे थे महाराज वर्णन करते हैं राधा रानी के लिए विठल रानी महाराज को कहना पड़ा राधा रानी यदि दो अक्षर भी बोलते और उनके हंसते हुए दांत मुझे दर्शन दे दे मुझे मुक्ति रूपी सीकड़ी से लेना क्या है मुझे मुक्ति रूपी ये प्रभाव गोकुल में दे आए प्रभु रूप उनने दिया था आपको यमुना जी का इन्होंने भी किया महाप्रभु जी ने भी यमुनाष्टक लिखा अष्टपदी विठल नाथ जी ने यमुना जी की लिखी तो रूप क्या पीछे रहने वाले थे उन्होंने भी लिखा रूप जी ने लिखे बड़े बड़े दंडक विठला जी ने कोशिश की, रूप जी के दंडकों का कोई उत्तर नहीं है। जय जय कैसी रूप गोस्वामी जी की यह कविता है। रूप सौ चैतन्य पादाब्जो भास्करस्य च रूपद्रष्ट वृंदावन में जो रूप सनातन जी की प्राच परंपरा थी उसके लिए उत्तर आता है। रूपो वृंदावन नष्ट रूपो जो हरे रूपा संकीर्तनाचार्य रूपो ब्रज रूपा शांत प्रदो मुनि ये शांति यदि मिलेगी तो यही मिलेगी। क्यों उनके बारे में तो बहुत सुन लिया तो मैंने क्या अपनी वाणी पवित्र कर कर हो सब महोत्सव महोदय की व्याख्या कर महोत्सव महोदय मधुर कान शोभा महोत्सव महोदय मधुर गान शोभाग्य मदन सार मदन सार राधिका कृष्ण हृदय जगत देव वंगई नुकाम नमाम ब्रज निखिल भोग आगे श्री रूप गोस्वामी महान भाव वृंदावनस्थ परम प्रसिद्ध हमारी भट्टी ने सिद्ध कर दिया कि वो तो विद्यमान रहती है हमेशा विराजमान है तो मैं वर्तमान कर ही लेकिन रूप गोस्वाम महान भाव वृंदावन परम प्रसिद्ध रथामृत कौन का है रथामृत प्रधान दिया है ये रथामृत को आवेदा कहां रथा को अमृत कहां से आ गया मैंने राधा रानी जी के बाद दिया है यार अंतिम इनके व्रतों को प्रणाम कर रहे तो लेने के दिन रहे तो मैंने संक्षेप बना दिया हंस दूतो छंद हंस दूतो अक्षर हंस दूतो गोविंद मानव दान के भक्त रसामृतः जी गोस्वामी जी ने तेरे पूरे चार अंक के तो कर दिए सब हंस दूत गोविंद मानव दान भक्त रसामृतः उज्ज्वलो उज्ज्वल मणि उज्ज्वलो मथुरा श्रवणे मथुरा रूप गोस्वामी नयने मथुरा वदने मथुरा कथने मथुरा को मथुरा 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 तो नाम ले लिया सबको ले तो उनको शुरू हो जाएगा उपरो मथुरा पत्या वृंदी नाटक चंद्रिका संक्षेपो संक्षेपो ललितश्चापि ललित माधव संक्षेपो ललितश्चापि संक्षेपो ललितश्चापि श्री गणोपदेश दीपिका श्री गणोपदेश जैसा लोगों को परेशानी हो जाती है उसका जन्म का उभार ढूंढते रह जाओ तो ये उन्होंने सब लिख दिया संक्षेपो ललितश्चापि श्री गणोपदेश दीपिका कृष्ण जन्म कृष्ण जन्म प्रयोक्तस्य आज्ञा व्याकरण का है ना कृष्ण जन्म प्रयोक्ता च अष्टकारिक भावना में भगवान ने प्रयोग किया था अष्टकारिक रूपोत्पान वर्याणां ग्रंथाः सप्तदश स्मृताः रूपोत्पान वर्याणां ग्रंथाः सप्तदश स्मृताः वहां लहरी चार टुकड़िए और ये सत्रह जो ग्रंथ मिलते हैं उनको मैंने पकड़ा और ये कर्को नए हैं इसलिए मैं अगर प्रारंभ में जो बोलना था वो नहीं बोल सका इसलिए मैं इनके बारे में जरूर कहूंगा कि हमारे जो बैठे हुए हैं मौन धारण किए हुए प्रचंड विद्या के सूर भक्तिविनाथ नारायण जी महाराज इनका तो मैंने लेता प्रारंभ में मंगलाचरण के साथ मुझे रहना चाहिए था गौरव का उल्लेख करना चाहिए तो मैं सोचा तो था प्रणाम को बहुत दिन लगा देगा इनके विशेषण जोड़ता जाएगा टप्पी मालगाड़ी के से विद्यार्थी कुल्या गया की जब करूँगा गौरी वैष्णव नंद कुल्या गया की गया और सिंचित आदि से पत्रों को बनाना वही से व्यवहार व्यवहार से प्रदेश आ रहा महादुर धरा भूमि धुंधवान मिला तो श्री कृष्ण जगन नायक नाम श्री भक्त नाना शास्त्र शारदाना वसुधा भारतीय संस्कृति संरक्षण संवर्धन तत्पराणाम श्री गौरी वैष्णवाचार्य तथा श्री एसी वेदांत महोदयाय एसी वेदांत महोदय एसी वेदांत महोदयानाम दीक्षा समसमे विराजतानाम पुण्य था उसमें भागवत पत्रिका का संपादक बना दिया और एसी वेदांत जी थे संतोपति अब आजकल मुझे सुन दिया है मैं संतोपति तो इन्होंने एसी वेदांत जी को संघपति बनाया था मैं भागवत पत्र डाला उन सब में 1959 में संपादक मंडल में था तो एसी वेदांत महानुभावाना दीक्षा समय विराजताना तत्पभु हित समाराधरे तत्पराणाम श्री भक्त वेदांत नारायण जी महाराजा नाम अत्र श्री रोग हुआ भूख हो स्वामी स्थाने पर हो सब फले विराजताम शुभाभंधनम वंदनम स्वागतावनंदनम नमन राधाम बिना तिष्ठत नैव हर्षा तस्मात् ब्रह्मा विपन्नस्थितस्य राधा के बिना भक्त राधा में बन नहीं सकता राधे तो उनके बन सकते थे और वहां ये आज गर्भो सब कर रहे हैं राधाम बिना तिष्ठत नैव हर्षा तस्मा ब्रह्मणां विपन्नस्थितश्च तस्य प्रसन्ने विरहो भवेयम् उन्हीं के भक्त रूप को प्राण तस्य प्रसन्ने बड़ी बात तो आपने सही कही हमने तो भैया की भूल दी थी रूप गोस्वामी को राधा रानी को जय मिली तस्य प्रसंगे मेरा हो सोयम श्री भक्त वेदांत बोधा करोति श्री भक्त वेदांत सबोधा करोति अद्भुत विलक्षण पंडित जैसा मैंने वर्णन किया है दूल्हे कलाओं में वो अंदर गोस्वामी जी को, और वो तो पढ़ाई नहीं है, वो भागवत पत्र का मैं दे दूंगा आप क्या करेंगे। तो मैंने एक पुष्प गुच्छ का भी बनाया है कि एक अक्षर पांचों पंखुड़ियों में मिलता है, एक अक्षर बीच वाला पांच पंखुड़ियों में मिलकर के चलता है। और रूप गोस्वामी जी के पुष्प बना के लाया था, वो दिखाने की चीजें पढ़ने की क्यों नहीं है, उसने समझ नहीं किया। उन्होंने कहा कि नासिक के किसी महात्मा जी ने पुष्प गुच्छ बनाया था, उसकी मैंने नकल मार दी, उन्होंने एक बनाया, मैंने 108 बना दी, और बनाया एक डेढ़ महीने में, दो दो महीने में एक बनाई, और कहीं मुझे पुष्पों को नहीं मिला, इसलिए नया हो सकता है। मैंने वो पुष्पी को नहीं किया। श्री नंद नंद नयना नन नंद नरवे चैतन्य तो आया, अब उस दोबारा आने का हर दूसरे अक्षर चैतन्य तत्व तर के वनी